नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गंगोत्री से गंगासागर तक लहराया भगवा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। विद्यालय शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने देहरादून स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। कहा, सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री से गंगासागर तक लहराता भगवा परचम केवल एक जीत का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का सशक्त संदेश है।
आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में भी भाजपा ने बहुत एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं। इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति धर्म इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय के साथ सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मैं समझता हूं कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार बागेश्वर जनपद में अच्छे से काम हो रहा है और जो हमारी यूसी होने के बाद जो चाहे वो मनरेगा की स्कीम्स हैं चाहे पेयजल की हैं हमारे जल जीवन मिशन की हैं उनकी कुछ फंड्स समय से नहीं आया था, मगर मेरी बातचीत हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे जो पेयजल से संबंधित समस्याएं और जो मनरेगा का बैकलॉग है तो वो बहुत जल्दी मिलेगा, जो कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग का भी मुझे जो रिजल्ट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, उन लोगों ने भी एक अच्छी उपलब्धि जोड़ी है। आज की शिक्षा है, सड़क है और अभी हमारे एनएच के प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा काम बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के लिए है। जिस प्रकार से टू लेन का काम चल रहा है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बागेश्वर की दूरी और समय बहुत ज्यादा बचेगा।
प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों से होते हुए श्री गोलजू संदेश यात्रा के अल्मोड़ा पहुंचने पर लोगों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान रंग वाली पिछौड़ा पहनकर गोलू देवता की पूजा अर्चना की। यात्रा के प्रदेश संयोजक विजय भट्ट ने कहा कि ये यात्रा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को जोड़ते हुए उत्तराखंड की संस्कृति को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है।
गोलजू यात्रा पूरे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को जोड़ते हुए उत्तराखंड को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी कर रही है। यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की अभी तक रही है। वर्तमान में यह यात्रा 4000 से ऊपर तक की रहने वाली है। इस बार में चाहे सुरकंडा देवी रही हो, चाहे चंद्रभद्री देवी रही हो, सेम मुखेम और होकरा देवी, ऐसे अनेक स्थानों पर बद्रीनाथ जी, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, ऐसे सब देवताओं का हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं।
गौरतलब है कि श्री गोलजू संदेश यात्रा अपनी धरोहर न्यास की ओर से आयोजित की जा रही है। इस वर्ष 19 अप्रैल से चंपावत से शुरू हुई ये यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों की परिक्रमा के बाद 9 मई को फिर से चंपावत पहुंचेगी। श्री गोलजू संदेश यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति और धार्मिक आस्था को जोड़ना है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
विद्यालय शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए शीघ्र ही विद्या समीक्षा केंद्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा जाएगा, जहां पर शिक्षक और अन्य कार्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, ताकि आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभाग में पारदर्शिता, दक्षता, सुशासन के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में सरकार ने अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है और अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे शिक्षकों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक क्लिक पर उनकी छुट्टियां मंजूर होंगी। डॉ. रावत ने कहा कि शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को शीघ्र लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे शिक्षा विभाग पूरी तरह ई गवर्नेंस आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर हो सके। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज देहरादून स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के विभिन्न अनुभागों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रसारण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति आकाशवाणी की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की ताकत उसके कुशल प्रस्तुतकर्ताओं के समूह में निहित है। उन्होंने अनुभवी आवाजों को बनाए रखते हुए नई प्रतिभाओं को लगातार शामिल करने के महत्व पर बल दिया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कालसी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इकाइयों का निरीक्षण करते हुए उनके उत्पादों के बेहतर विपणन और गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने समूहों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने के लिए गूगल मैप्स पर पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए, ताकि उनके उत्पादों की पहुंच व्यापक स्तर तक हो सके। एक रिपोर्ट।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हरिपुर स्थित महिला समूह की ऑयल यूनिट और कोटी कालसी ग्रोथ सेंटर का दौरा कर उत्पादन प्रक्रिया और गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समूह के उत्पादों के प्रचार प्रसार और बाजार उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही ग्रोथ सेंटर में पानी की समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर का निरीक्षण भी किया और उसके रखरखाव, जल संरक्षण तथा सौंदर्यकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मत्स्य विभाग को निर्देश दिए कि महिला समूह को प्रशिक्षण दिया जाए और सरोवर के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कालसी डेयरी फार्म के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुग्ध उत्पादन और पशुपालन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने पशुओं के उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समन्वय के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी योजनाओं और इकाइयों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रयास तेज किए जाएं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक लहराया भगवा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। विद्यालय शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने देहरादून स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। कहा, सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।